శ్రీ శ్రీ జగన్నాథ్ బలదేవ్ సుభద్రమైకి శ్రీల ప్రభుపాదకి ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. तो आप सबका आज के विशेष प्रभात जागृति में स्वागत है. हरे कृष्ण. आप लोग में से बरसाना आए थे, सब लोग इधर हैं इस बैच में. मैं इसी को विचार कर रहा था दो दिन से कि भौतिक दुनिया में हम सब लोग जीवन प्राप्त कर चुके हैं, शरीर प्राप्त कर चुके हैं और भागवत में एक श्लोक है, प्रायेण अल्पायुषा सभ्या कला वस्मिन युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या विपद्रतः. कलयुग का समय ऐसा है कि इसमें आयु बहुत कम है, स्मृति बहुत कम है और सब लोग बैड लकी हैं, दुर्भाग्य है सबका. क्योंकि सबसे आसान चीज भगवान को प्राप्त करने की उपलब्ध होने के बाद भी लोगों को उसमें रुचि नहीं होती है, इसलिए वो कहते हैं कि वो बहुत दुर्भाग्य लोग. भागवत में लिखा है मंद यानी सब लोग मंद बुद्धि हैं, बहुत जल्दी कुछ सीख नहीं सकते हैं. और सबसे बड़ी बात क्या है, हम सब लोग आलसी हैं. कुछ भी करने को बोलो ठीक है, सोने को बोलो तुरंत हो जाएंगे, कितना भी घंटा बोलो हो जाएगा. देखो आप अपने आप को देखो क्या मेरा पोजिशन है. अगर सोने का मौका दिया तो सोने को तैयार रहेंगे कभी भी. कुछ भी काम करने का समय आएगा तो बोर होता है, पढ़ाई करने को बोर हो जाता है, यहाँ तक कि लंबे बाल हो गए तो फिर बनाने के लिए बोल रहे क्या है, कितनी बार बनाने कपड़ा धो लो तो इसलिए करो क्या है, पढ़ाई करो इतना तकलीफ हो रहा. इसका मतलब एक ही है, अगर आप उसको सोचेंगे ना ध्यान से तो हमारे कल्याण की जो बातें हैं उसमें हमको इंटरेस्ट नहीं है और हमारे लिए जो अच्छा नहीं है उसमें बहुत इंटरेस्ट है. ऐसे लोगों को देखो शराब पीने में कितना इंटरेस्ट है, मांसाहार करने में कितना इंटरेस्ट है, हाँ लड़कों को लड़कियों में, लड़कों में लड़कियों को लड़कों में कितना इंटरेस्ट है, औरतों को आदमियों में, आदमियों को औरतों में कितना इंटरेस्ट है, धन में लोगों को कितना इंटरेस्ट है ना. ऐसा कोई है जिसको धन में इंटरेस्ट नहीं है? सब लोग धन के लिए ना कुछ भी कर सकते, मतलब इतना तक भी धन कमाना कोई पाप नहीं है, लेकिन धन किसी भी कीमत पर कमाना ये आज का तत्व है. डू और डाई लेकिन मेक मनी, चाहे किसी को चीटिंग करो, किसी को फंसाओ, किसी को नुकसान करो उसका, किसी को उध्वस्त कर दो, मतलब ऐसा बिजनेस करो कि सामने वाला सो जाए पूरा कंप्लीट, सुलाने का उसको पूरा, मतलब पैसे के लिए कुछ भी. थोड़ा सा आवाज कम करो, थोड़ा सा कम करो आवाज. तो ये सब हमारी अवस्था है ना, मैं भी उसमें हूं. ऐसा नहीं समझना कि मैं आपको बोल रहा हूं तो मैं उसमें फ्री हूं. हम सब लोगों को इस पर काम करना है कि हम लोग ये प्रभात जागृति क्यों करते हैं. जरूरी नहीं है नर्सिंग पढ़ाई कर सकते हैं, हम लोग प्रभात जागृति ये लोग क्या है, प्रभात जागरूकता की जरूरत इसलिए है कि हम लोग अपने दुनियादारी में इतने फंसे हुए हैं कि हमको ज्ञान प्राप्त करने का मौका ही नहीं है कि हमारे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। खाली हो रहा है, बस जिंदगी जा रही है। रोज सुबह ट्रेन में लटकने का, काम को घर जाने का, सो जाने का, उठने का, सो जाने का, वापस भागने का, ऊपर से भोग लेने का, प्रयास करने का, फिर भागने का। देयर इज नो टाइम, ओनली सोचने के लिए भी टाइम नहीं। अभी अभी ऐसा हो रहा है कलयुग में ना कि आदमी का माइंड भी फ्री नहीं है, इतना माइंड भी बिजी है कि माइंड को भी सोचने को टाइम नहीं है। क्या हो रहा है सोचने के लिए, अचानक मालूम पड़ता है कि अरे डायबिटीज हो गया, अरे बाप रे, अरे अचानक हार्ट का भी बहुत सब ब्लॉक हो गया है, क्योंकि सोचने को ही समय नहीं है, फुर्सत ही नहीं है आदमी को, विश्रांति का समय ही नहीं है, इतने ही हम लोग लगे हुए हैं। तो ये प्रोग्राम के बारे में हम लोग थोड़ा सा सोच सकते हैं कि भाई थोड़ा देर बैठे एक घंटा के लिए, सोच रहे हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है, हमारे लिए क्या अच्छा नहीं है। कम से कम आपको इंटरेस्ट नहीं भी होना तो कम से कम कान में तो पड़ रहा है आपके, तो भाई अच्छा नहीं है। बाद में आपको करना है वो करो, आप उसको गंभीरता से लो मत लो, ये आपके ऊपर, आपकी जिंदगी आपके हाथ में है, आपके कर्म, आपके भोग, आपका सुख, आपका दुख सब आपके हाथ में है। हम लोग क्या कर सकते, मेरा सुख मेरा कर्म मेरे हाथ में है, मैं उसको बदल सकता हूँ अगर मेरे पास बुद्धि है, ज्ञान है। तो लेकिन कम से कम अगर बुद्धि ज्ञान है तो दूसरों को थोड़ा बताना चाहिए, अच्छा लगे या ना अच्छा लगे लेकिन बताना चाहिए। मुझे अभी भी याद है, आज मुझे ये उम्र में बहुत याद आती है कि मेरे पिताजी माताजी ने कितनी बातें बताई थी जो मैंने है ऐसे करके छोड़ दिया था। सामने नहीं बोला था लेकिन मन में ऐसे है, सब बातें याद आती है क्योंकि आज वही बातें हम हमारे बच्चे को बताते हैं, और बच्चे भी हैं ऐसा करते हैं, तब हमको याद आता है कि हमने वही किया था, उसका रिएक्शन है। तो हम नहीं सुधरे, वो नहीं सुधरेंगे, उनके बच्चे भी नहीं सुधरेंगे, और ये जिंदगी चलती रही ऐसे। ये सब कलयुग का प्रभाव है। अच्छी बातें कोई बताएगा तो इंसल्ट होता है और गुस्सा भी आता है, और कोई बोलेगा ए देख दम मार ले यार, तुरंत मार लेगा। कोई बोलेगा ए लड़की के साथ में थोड़ा सा टाइम पास करेंगे, तुरंत जाएगा। तो उधर कुछ खा के आएंगे, पी के आएंगे, वो डांस करेंगे रात को नवरात्रि को, तुरंत जाएंगे। कोई ज्यादा प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ती उसके लिए। नवरात्रि को कोई प्रचार करते आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जान जाते लोग, क्योंकि वो जो हमारी जो भावना की धारा है ना वो हमें नीचे बैठी, हमेशा ऊपर नहीं जा सकती, बहुत मुश्किल है ऊपर जाना। तो ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, मैंने पहले आपको पूछा कि आप लोग बरसाना में आए थे ना, ये बात बोलकर मैंने ये सब शुरू किया। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये समझ में आ रहा है कि इतना सब हमारा स्थिति होने पर भी भगवान हमको कितनी कृपा दे रहे हैं। आपके ऐसी एक ही बैच है जो दो बार बरसाना गई है ना, हम लोगों को भी पता नहीं चलेगा कि जो हमको कृपा हो रही है उसकी वैल्यू क्या है। जैसे प्रधानमंत्री आपकी माँ हो सकती है समझो, लेकिन प्रधानमंत्री अगर स्त्री होगी, उसका जो बेटा होगा अगले माँ को माँ की तरह ट्रीटमेंट करेगा, वो क्या है उसके घर में वही चलता है जो आपके घर में चलता है, अलग नहीं चलता है। जो एक बड़े कंपनी की एक बस बड़ी सीईओ है, हाँ उसके कुछ 130 करोड़ उसका साल का इनकम है, तो वो सक्सेसफुल वुमन ऐसा करके उसका इंटरव्यू लिया था, और उसके दो लड़कियां भी थी। तो लड़के ने इंटरव्यू में बोल दिया कुछ नहीं, हमको ध्यान नहीं देती है, हमारे पास टाइम नहीं देती, हम संतुष्ट नहीं है। हो सकता है वो बहुत यशस्वी औरत होगी दुनिया की, लेकिन एक माँ के रूप में हमको लगता नहीं है कि वो सही है। उधर भी विद्रोह है, यशस्वी सब लोग हैं लेकिन शांति शांति और कल्याण की बातें नहीं होती इसके अंदर। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी इतनी पतित अवस्था होने पर भी हम पर इतनी कृपा हो रही है। मैं बार बार सोचते रहता हूँ कि कितना भाग्य है हमारा कि हम लोग नौकरी कर रहे हैं, लेकिन नौकरी में हमें धाम में जाने को मिल रहे हैं, और नौकरी में वहां पर परम कल्याण की सेवा करने का मौका मिल रहा है। वो जो धाम है ना बरसाने का, वहां पर अनंत पुण्य किए बिना कोई पहुंच नहीं सकता है। आप मथुरा मंडल में पहुंच जाएंगे, लेकिन उसके अंदर जो अंदर का हिस्सा है ना, बरसाना, राधा कुंड, श्याम कुंड, गोवर्धन, यहाँ पर बहुत छाट छाट के लोग जाते हैं। कुछ लोग वहां पर जाकर मत्था टेक के चले जाते हैं। ये जो अंदर का रहस्य है, उधर हमको सेवा मिली है, और वो एक बार हम लोग अगर वो सेवा दिल से करेंगे ना, एक बार ठीक से मतलब परफेक्ट चेतना में, परफेक्ट भावना में एक बार भी करेंगे ना, तो इसी जन्म में उसी के आधार पर आप जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। उतना ही काफी है इन्वेस्टमेंट। एक ही बार आपने उतना आध्यात्मिक उन्नति को कमा लिया तो वही आपको पूरे जीवन में सुख देने के लिए और जीवन के बाद बेड़ा पार करने के लिए काफी है। और हमको बार बार मिल रहा है वो मौका, आपको दो बार मिला जो किसी बैच को नहीं मिला। लेकिन कभी कभी कैसा होता ना, वो हमारे घर में 1 करोड़ की पूंजी पिताजी ने रखी हुई है और हम लोग स्टेशन पे बूट पॉलिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता नहीं है कि ऐसा पूंजी पिताजी ने रखी हुई है। सोचे हम गरीब है इसलिए क्या कर रहे हैं, बूट पॉलिश करना पड़ रहा है। लेकिन समझो वो बूट पॉलिश करने वाले लड़के को एक व्यक्ति ने बोला, अरे पागल लड़के तू क्यों बूट पॉलिश कर रहे हैं यहाँ पर तेरे, मुझे पता है तुम्हारे घर में किसी को पता नहीं है, मैं था उस समय तुम्हारे पिताजी ने जमीन के अंदर 1 करोड़ का धन जो है वो पीछे उत्तर दिशा में रखा हुआ है, तो खोदो। तो जब वो जाके खोदेगा और उसको मिलेगा तो उसको श्रद्धा होगी ना अंकल के ऊपर, अंकल को मालूम था वो, तो अंकल ने आके बताया। तो समझे अंकल ने आके बताया और वो लड़का बोला, क्या आप अंकल उल्लू बनाते हो, कोई काम धंधा नहीं कर, जाओ ना अपने घर पे, क्यों बेकार में मेरा गरीबी को मजाक कर रहे हो। तो समझा रहे, नहीं बेटा ऐसा नहीं है, एक दिन छुट्टी लो बुट कॉलेज से, चलो मेरे साथ, हम लोग 2-4 लोग एंगेज करेंगे खुराड़ी वाले, उनको मैं पैसा दूंगा, बाद में भी लौटा देना वो पैसा मिलने के बाद, ऐसा बोलेगा वो समझाएगा आपको। और आप मान गए, आप समझो उसकी बात, और आपने खुदाई किया और मिला आपको धन, तो आपको अंकल को वो उसका पैसा भी देंगे, ऊपर से गिफ्ट भी देंगे उनको। लेकिन ये कब होगा, जब वो बूट पॉलिश कर रहा है तभी वो उसको बता रहा है, वो अगर सुनेगा उसको और सुनकर उसको विश्वास करेगा, विश्वास करके अमल करेगा उसके ऊपर, तो ही उसको वो धन मिलेगा, क्योंकि वो सत्य है, वो बता रहा है। वैसे आप लोगों को कुछ पता नहीं है, बरसाने ले गए ऐसे घुमा के लेके आए, सेवा करके भी पोस्टिंग हो गया, अपना साइन हो गया, सब कुछ हो गया, भाई एक हो गया काम अपना नर्सिंग के करिकुलम में, है ना, ऐसा हो सकता है ना। तो आपको वो लाभ नहीं मिलेगा जो आपको मिलना चाहिए, क्योंकि मलाई के मटके ऊपर जो लगा था ना भसरा, उसी को अपने जाग लिया। ऐसा मलाई का मटका होता है ना, बहुत सारा हाथ हाथ का मलाई लगता है इधर उधर, वो बंद करके रखते हैं तो वो बंद रहता है तो बाहर का चाट के जाता है, लेकिन उसके अंदर इतना मक्खन बना हुआ है उसका एंट्री नहीं हुआ है आपका, बार बार से थोड़ा सारा 2-3 ग्राम चाट के चले गए। लेकिन अगर बुद्धि है और नॉलेज है और सही भावना है तो पूरा अंदर का भी मक्खन आपको मिल सकता है। अगर आपकी नॉलेज है तो मिलेगा, तो कैसे मिलेगा। तो इसलिए हम बता रहे हैं कि कलयुग में इतना सारा वातावरण भयंकर है। मैं ना कभी कभी सुबह सुबह उठ के 5 बजे ट्रेन पकड़ के मंदिर में मेरी कथा होती है, तब मैं जाता हूँ कथा करने के लिए। अभी 5 बजे का समय है, क्या आप एक्सेप्ट करते हो, देखो लोग सो रहे हैं ट्रेन में। लेकिन ना मैंने कई बार, हर बार देखता हूँ, कल भी देखा, मतलब लोग 5 बजे सुबह SXC मूवी देख रहे हैं मोबाइल के ऊपर, 5 बजे बोलो, सब पूरा रेप खून बारी बोला बारी सब ऐसे खतरनाक चीजें सुबह देख रहे हैं। ये स्थिति है आज की, और सुबह क्या दिन रात देखते रहते, लेकिन सुबह क्यों बोल रहा, सुबह ब्रह्म मुहूर्त है, भगवान का नाम जप करने का समय है, उस समय भी देख रहे हैं इसको। मतलब इतना अपने माइंड को ना, इतना माइंड के अंदर इतना गंदगी भर रहे हैं सुबह से उठ के रात तक। तो वो व्यक्ति जो भी वो सुबह सुबह आके देखता है तो बाकी किसी औरतों को देखेगा तो उसके मन में क्या विचार आएगा, प्रणाम करो उनको माता जी के रूप में, ऐसा विचार आएगा उसके मन में, ये मेरी माता है, सब मेरी माता है, वंदे मातरम, ऐसा करेगा वो नहीं। वही भोग की वस्तु दिखेगी उसको जो उसने देखा है सुबह। तो दिन भर इसी चेतना में अपना जीवन चलता है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, दो ही चीजें मन में प्रधान रूप में चलती रहती है, एक पैसे का विचार और एक सेक्स का विचार कांस्टेंट चलते रहता है मन में, चाहे उम्र कितनी भी हो गई हो, ये दो चीजें मन में कांस्टेंट चलती रहती है, भले हम लोग उसको अमल नहीं करेंगे, मन में कांस्टेंटली ये एजिटेशन बोलते हैं ना उसको, आंदोलन चलते रहता है मन में, एक अपोजिट सेक्स के बारे में विचार, और एक पैसे के बारे में विचार करते हैं, दो चलते रहते हैं, और वो इतने पावरफुल है कि और किसी चीज को अंदर आने देते नहीं है वो विचार, और कोई विचार अंदर आ सकता नहीं है उसके अंदर, इतना मन उसके अंदर फंसा हुआ है। और ये स्थिति में श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं। अभी देखो कितना कॉन्ट्रास्ट बता रहा हूं आपको। हमने चैतन्य महाप्रभु कौन है, ये वो कृष्ण है स्वयं, और वो कृष्ण ने देखा कि अभी कलयुग में लोग क्या करेंगे, अभी सत्ययुग में ध्यान करते थे, अरे कौन ध्यान करेगा इसमें, जंगल में कौन जाएगा, सब गुफा खाली हो गई, अभी कोई बहुत वैकेंसी है उधर, कोई जाता ही नहीं है जब करने के लिए, हिमालय में अभी कितने लोग रहते हैं, बहुत कम कम लोग रहते हैं, पहले भरे हुए थे गुफाएं हाउसफुल, चलो ध्यान करते थे। तो भगवान देख रहे ध्यान कलयुग में कौन ध्यान कर सकता है, 60,000 साल, अरे 6 मिनट नहीं कर सकते हैं, 60,000 साल की बात तो भूल जाओ। उसके बाद में वो त्रेता में राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, क्या क्या, बाप रे इतने साल लगते थे, हमारा तो एक यज्ञ 1 घंटे में हो जाता है, 1.5 घंटे मैक्सिमम है, ज्यादा एक्सप्लेन किया 2 घंटा। उसके ऊपर किधर है अपना यज्ञ, अश्वमेध गोमेध राजसूय यज्ञ तो कई साल चलते थे, उसमें टनों में घी और टनों में, वो ब्राह्मण लोग ऐसे मंत्र बोलते थे तो मंत्र बोलने से तुरंत अग्नि उत्पन्न होती थी, तो अपना कैसा है माचिस ठक 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 कर रहा है फिर भी वो नहीं हो रही है, ऐसा हमारा अग्नि पर उनकी मंत्र अग्नि, तो बोले ऐसा कौन कर सकता है, अभी साहित्य किधर है, सब गंदा साहित्य है, घी साहित्य अच्छा नहीं है, इंजेक्शन मारा हुआ दूध का घी बना हुआ है, सब ऐसे साहित्य ही नहीं है तो कैसे यज्ञ होगा। चलो वो भी गया, फिर तीसरे युग में बोले मंदिरों की विग्रह की पूजा करना चाहिए, हम लोग नहीं कर सकते उसको जो करते थे पहले, इतने मंत्र इतने विधि हुआ करते थे भगवान को स्थापन करने के बाद सेवा करने में, फिर कलयुग में क्या करेगा लोग, 2 मिनट बैठ नहीं सकते एक जगह पर। हाँ हम लोग बच्चों को बताते हैं कि भाई 5 मिनट उनको रोज बिठाओ एक जगह पर, कुछ नहीं करना है खाली आंख बंद करके बैठो, नहीं बैठ सकते वो, एक एक मिनट में ऐसे आंख खोलते हैं, तो कहां पर मन किधर शांत है। और कोई बोलो 10 मिनट पढ़ो भगवान के विषय में, एक श्लोक बोलो तो भी उसमें रुचि नहीं है, सब हर समय भोग में रुचि है, क्या खाऊं क्या पीऊं क्या एंजॉय करूं कैसा पैसा कमाऊं कैसा एंजॉय करूं, ये काफी नहीं है वो काफी नहीं है, एक मोबाइल नहीं 2 मोबाइल चाहिए, ये भी मोबाइल है तो उसका आगे वाला चाहिए, है ना, ये शैम्पू अच्छा नहीं तो उसका आगे वाला फॉरेन का शैम्पू चाहिए, ये कितनी चीजें हैं जो हमको चाहिए 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 चाहिए, इसमें हम लगे हुए हैं दिन रात, चाहिए मुझे चाहिए, आई वॉन्ट आई वॉन्ट आई वॉन्ट, शांति नहीं है। और वो मिलेगा तो वो होता है ये मिल गया मुझे, तो ये भी बेकार है, उसका आगे का फिर कितना अच्छा है, मार्केट में अभी नया नया आया है वो चाहिए मुझे, और वो मिलने तो कितने तड़पे थे उसको, वो मिलने के बाद 3 महीने के बाद बोर हो गए उससे, दूसरा चाहिए हमको, एक घड़ी है तो संतुष्ट नहीं है, 4 घड़ी चाहिए, किसी के पास 15-15 घड़ी है मैं जानता हूँ, फिर समय तो वही है उसके अंदर समय दूसरा नहीं होता है, 2 लाख की घड़ी पहनो या 2 रुपये की घड़ी पहनो, समय बदलता नहीं है, समय वही है, 2 बजकर 15 मिनट वही दिखाएगा वो आपको, कोई स्वर्ग का टाइम दिखाएगा ना, स्वर्ग में कितने बज रहे हैं इंद्र के राज्य में, ऐसा नहीं बताएगा वो तो इतना इतना हमारा जीवन ऐसा मराठी कहते ना धकाधकी का जीवन, धकाधकी म्हणजे काय, वेळच नाही कुठे मध्ये, थोडी धकाधकी एवढी धकाधकी एवढी थोडं खायला होतं। तो ऐसे स्थिति में कृष्ण भगवान सोचते हैं कि अरे मैं तुम्हें ध्यान करने को बताऊं कि तप करने को बताऊं क्या नियम पालन करने को बताऊं, क्या करूं मैं उनको, कोई कष्ट कर नहीं सकता है, तो फिर भी वो इतना प्रेम है भगवान को कि इनका उद्धार कैसे होगा, फिर अगर ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं तो फिर मेरे पास पहुंचे नहीं कैसे, लोग भटकते रहेंगे यहाँ पर दर दर के ठोकरे खाते रहेंगे। तो भगवान ने सोचा पिछले युगों में मैं नरसिंह भगवान बनकर आया, उसमें हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ दिया मैंने, हिरण्याक्ष का वध कर दिया, रावण का वध कर दिया, राक्षस कुल का पूरा वध कर दिया त्रेता युग में। हाँ तो राजा रानी कहती है कि कितने क्रूर हो आप, हाँ भगवान राक्षस को मार रहे धनाधन, मतलब ऐसा मार रहे ना कि आकाश में युद्ध हो रहा है, पृथ्वी पर पैर रखने को जगह नहीं, क्योंकि उसका पैर ही इतना बड़ा है, पैर से लात मार के पृथ्वी को ऐसा फेंक दिया था उसने, इतना बड़ा आदमी था वो, तो वो पृथ्वी पर युद्ध कैसे करेगा, आप एक गेंद में खड़े होकर युद्ध कर सकते क्या, वैसे पृथ्वी है वैसा वो, तो वो स्पेस में युद्ध कर रहे हैं और स्पेस में स्पेस वॉर हो रहा है, भगवान भी वो साइज के होके आ रहे हैं, वो युद्ध हो रहा है। तो राजा रानी कहते हैं कि कितने आप कितने शस्त्र शस्त्र का वापर करते क्रूरता से मारते, तो ठीक है मैं अगली बार आऊंगा ना, मतलब सीता देवी बोल रहे राम को कि उन्होंने देखा ना इतना राक्षसों को कितना अस्त्र से मारा, बाप रे, राक्षस कुल का पूरा ध्वंस कर दिया पूरा। तो सीता जी बहुत दया वाले है, बोलने को प्रभु आप कितना दुष्टता से ऐसे शस्त्र उठा के मारते हो। तो ठीक है अभी मैं अगली बार शस्त्र यूज नहीं करूंगा। तो कृष्ण के अवतार में आए ना वो, तो देखो पुतना को तो ऐसा स्तन पान करते हुए चुस चुस के मार दिया, और किसी के मुंह में हाथ डाला वो मार दिया, अगासुर के मुंह में चले गए उधर से मार दिया, और चुनावर्त को गला ऐसा पकड़ा और मार दिया। कुछ शस्त्र यूज नहीं किया, कोई भी शस्त्र यूज नहीं किया। अरिष्ठासुर को भी मुक्का मारा ऐसे ही मार दिया, कोई शस्त्र यूज नहीं किया। फिर भी राधा रानी क्या बोलती है, उस जन्म में सीता देवी राधा रानी बनकर आए ना, तो कहते हैं कृष्ण कितने तुम दुष्ट हो, मतलब कितने क्रूर है तुम, थोड़ी करुणा तो क्या करो। बोले अगली बार ना ना किसी को मारूंगा और ना किसी को शस्त्र लगाऊंगा, मैं शस्त्र लूंगा नहीं और मारने का भी सवाल नहीं, मैं मारूंगा ही नहीं किसी को। तो वो लोग जो रावण कुंभकर्ण थे ना पहले जमाने में, और जो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप थे, तीन अवतार लिए उन्होंने है ना, दंतवक्र शिशुपाल एक बार द्वापर में, त्रेता में रावण कुंभकर्ण, और सत्ययुग में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप, ऐसे तीन बार आए वो। कौन थे वो? जय विजय वैकुंठ के द्वारपाल थे। तो चौथी बार भी कलयुग में आए वो, कौन? जगाई और मधाई बनकर आए, और वो जगाई मधाई जन्म से ब्राह्मण उच्च कुल के, इतने अच्छे घर के, अच्छे संस्कार लिए हुए, लेकिन इतना पाप करते थे, इतना पाप करते थे कि ऐसा लिखा है उसमें कि हम सब लोग दुनिया के मिलकर पूरी पावर के साथ भी पाप करेंगे ना तो पूरा जीवन में उतना पाप नहीं कर सकते, उतना वो एक दिन में करते थे। मतलब जुआ खेलना, नशा करना, बलात्कार करना, आग लगाना, चोरी करना, लोगों को मर्डर करना, जो भी आप बोलो जो पाप होता है वो दिन में हर दिन करते थे। इतनी शक्ति भी थी उनके साथ में और इतने खूंखार भी थे, लेकिन जन्म इतना अच्छा होने पर भी इतने पतित थे वो। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको ना बाकी युग में तो मार डाले थे उनको, अगर बाकी युग में होते, इन लोगों को माफ कर दिया उन्होंने और उनको हरिनाम दिया, और कुछ ही क्षणों में भगवान की भक्ति में पागल हो गए वो। सब पाप पाप उनका भगवान ने छीन लिया पूरा, मतलब अपने ऊपर लिया, भगवान का गोरा शरीर पूरा काला हो गया। ये क्यों बता रहा हूं मैं, मतलब ये जो कृपा है ना, इनको मारना चाहिए एक्चुअली, वध करना चाहिए, जो पहले युग में करते आ रहे हैं भगवान, वो भगवान ने इन सबको मारा नहीं, किसी को भी मारा नहीं, क्योंकि वो नित्यानंद प्रभु बता रहे हैं। नित्यानंद प्रभु कौन है? बलराम जी के अवतार है। कृष्ण कौन? चैतन्य महाप्रभु कौन है? कृष्ण के अवतार है, स्वयं कृष्ण है वो। तो बलराम जी जो नित्यानंद प्रभु के अवतार में है, वो चैतन्य महाप्रभु से मारने वाले हैं चक्र लेकर, तो नित्यानंद प्रभु उनको याद कर रहे हैं, भगवान ये अवतार में मारना नहीं आपको, क्योंकि इनको मारेंगे तो पब्लिक सबको मारना पड़ेगा, सब लोग छोटे बड़े ऐसे ही है, सब लोग थोड़ी बड़ी मात्रा में वैसे ही है, मतलब इनको मारेंगे तो फिर इसके हिसाब से ये न्याय से सबको मारना पड़ेगा, तो आपका अवतार तो उनका उद्धार करने के लिए हुआ है, तो कैसे आप इनको मारेंगे, इनको मत मारो आप। ऐसे भगवान की करुणा को जगाया उन्होंने, और भगवान की करुणा की याद भी दिलाई कि आप आए थे किस लिए, आपने वादा किया था ना किसी को नहीं मारेंगे, सबका उद्धार करेंगे, सबको प्रेम देंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको गले लगाया, और गले लगाते उनका सारा पाप उनके शरीर में आया, और उनका गौरांग का शरीर है ना, स्वर्ण का शरीर था उनका, वो पूरा काला हो गया उनके पाप की वजह से। और ये लोग आनंद में नाच रहे हैं भक्ति से एकदम, और फिर भगवान ने खुद कीर्तन किया, और कीर्तन करते करते उनका सारा पाप जो है वो अवकाश में चला गया। और उन्होंने बताया इसके आगे जो वैष्णवों का अपराध करेंगे ना, किसी का अपराध करेंगे ना, तो ये जो अवकाश में पाप रखे हुए ना, वो सब तुम्हारे में प्रवेश करेंगे, लेकिन हरिनाम करेंगे तो फिर वो उधर ही रहेंगे, तुम्हारे पास नहीं आएंगे। तो इतना भयंकर पाप का राशि जो है ना, उन्होंने हरिनाम संकीर्तन करके अपने शरीर से उधर ऊपर भेज दिया उसको, अवकाश में रख दिया, और बोला तुम लोग में से कोई अपराध करोगे ना तो वो तुम्हारे अंदर प्रवेश करेंगे, जो उन्होंने किए थे आपने नहीं किए थे, इतना आपके अंदर प्रवेश करेंगे। ये भी एक कृपा है, कोई तपस्या नहीं किया, कोई दान पुण्य नहीं किया, कोई त्याग नहीं किया, कोई संन्यास नहीं लिया, कुछ नहीं किया, उधर के उधर ही कृपा कर दिया उनके। तो ये किसी को पता नहीं है, ये चैतन्य महाप्रभु कौन है मालूम नहीं उनको किसी को, क्योंकि वो छन्न अवतार है भगवान का, भगवान ने खुद उसको छुपा के रखा हुआ है, और अपने अपने लोगों को पता बता रहे हैं वो, जो प्राइवेट लोग हैं उनके, उसमें से हम लोग हैं, उनको हमको पता हो गया ये बात कि महाप्रभु चैतन्य कौन है। अभी ये सब बता रहे क्योंकि 8 तारीख को उनका जन्मदिन है, 9 तारीख को, गौरांग महाप्रभु का आविर्भाव, जैसे गोकुलाष्टमी होती है ना वैसे गौर पूर्णिमा, जन्माष्टमी और गौर पूर्णिमा। तो क्यों आए इस रूप में श्री कृष्ण? क्योंकि श्री कृष्ण जानते हैं कि कलयुग में लोग कुछ नहीं कर सकते, और समझो हमारा बच्चा एकदम यूजलेस है, कुछ पढ़ाई में भी इंटरेस्ट नहीं है, कुछ बाबा उसको कुछ कला में इंटरेस्ट है, कुछ पेंटिंग करने में इंटरेस्ट है, कुछ रिपेयरिंग करने में इंटरेस्ट है, भाई कुछ मोबाइल रिपेयर में इंटरेस्ट है, कुछ भी ऐसा होता है ना इंटरेस्ट, कुछ ना कुछ होता है, उसको कुछ इंटरेस्ट नहीं है, कुछ पढ़ना नहीं है, कुछ करना नहीं है, उसको काम नहीं करना है, घर का हेल्प नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, फिर भी माँ बाप उसको बोलते क्या गेट लॉस्ट ऐसा कर देगा, तुम वो कितना भी यूजलेस होगा ना तभी वो बोलता है मेरा बेटा है वो, ठीक है मैं उसको रखूंगा, कोशिश करूंगा और कहीं किसी को दिखाऊंगा, कुछ करूंगा, इलाज करूंगा, कुछ ना कुछ उसको करूंगा, या उसके नाम पे कुछ रखूंगा, भाई मेरा बेटा ऐसा है कि क्या कुछ नहीं कर पाएगा, कम से कम वो दो रोटी खाएगा ना, इतना पैसा उसके लिए बांध के रखता हूँ मैं, वो खाएगा ना। एक इसका मतलब क्या होता है, प्रेम इतना है माता पिताओं का कि जानते हैं दूसरे का बच्चा होता ना तो 50 गाली देकर लात मार के निकाल लेते उसको, दूसरे का बच्चा हुआ तो, लेकिन वो खुद का बच्चा है इसलिए इतना सब होने पर भी उसके बारे में करुणा और प्रेम का विचार छोड़ते नहीं वो। आपने देखा होगा ना ऐसे सब घर में जो निकम्मे कोई होते हैं लेकिन माता पिता उनको त्याग नहीं करते कभी, उन पर प्रेम ऐसा रहता है जितना अच्छे बच्चे पर रहता है उतना ही वो बेकार बच्चे भी प्यार रहता है उनको, क्योंकि वो मेरा बेटा है, कुछ भी हो काला हो गोरा हो दुष्ट हो कुछ भी हो मेरा बेटा है। इसलिए वो भी वो गांधारी देखा ना आपने, इतना दुष्ट बच्चा उसका दुर्योधन, इतना दुष्ट बच्चा, दुनिया बोल रही है इसको त्याग करो आप, फिर भी वो गांधारी क्या बोलते हैं आजा बेटा आजा स्नान करके आजा, मैं पट्टी खोल रही हूँ तो तेरा बॉडी पूरा वज्र का बना देती हूँ। क्या है ये कारण क्या उसका? प्रेम है उसका, इतना दुष्ट और इतना भयंकर राक्षसी लड़का है उसका, वो कुल का नाश करने वाला लड़का है, कुल दीपक नहीं है कुल नाशक लड़का है, पता है उसको, फिर भी महाभारत के बारे में उसको बुलाकर क्या कर रही है, अपने पतिव्रत का तेज उस पर डालकर उसको वज्र का शरीर बनाने का कोशिश कर रही है और बना दिया उसने। तो वैसे ही भगवान का भी हमारा तो प्रेम है, उनके दृष्टि से हम सत्य युग के भी नहीं है ना द्वा त्रेता युग के है ना द्वापर युग के भी योग्य नहीं है, हम लोग तो कलयुग के पतित जीव हैं, सबसे आलसी सबसे मंदभागी सबसे एक बताना भूल गया एक बात, हमेशा लड़ने वाले। अरे बाप रे, एक वो श्लोक में लास्ट है ना उपद्रुता, उपद्रुता मतलब हमेशा उपद्रव से त्रस्त रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ट्रेन में जाओ उधर धक्का मारो झगड़ा, तो पाँव पे पाँव रखो झगड़ा, इधर कंपनी में कुछ हो गया तो झगड़ा, इधर कॉलेज में कुछ हो गया झगड़ा, इधर इधर देखा उधर देखा ये किया वो किया, झगड़े के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कलीग में नौकरदार में हमारे साथ में जो काम कर रहे हैं कोई कारण नहीं बिना झगड़ा करते रहते, भाई भाई घर पे रहते झगड़ा करते रहते। तो क्या भगवान बताते हैं भागवत में कि कलयुग में सब लोग झगड़े से परेशान रहते हैं, कॉन्स्टेंट फाइट इज गोइंग ऑन। तो ऐसे अवस्था में मन ही फ्री नहीं है, अभी इनसे लड़ रहा हूँ बाद में उनसे लड़ रहा हूँ बाद में इनसे लड़ रहा हूँ, कॉन्स्टेंट लड़ाई चल रही है, तो माइंड फ्री किधर है कि मेरा कल्याण कैसे होगा, आगे सोचने वाले सोचने के लिए टाइम किधर है। तो ऐसे में भगवान ने सोचा कि इन लोगों को ना कोई तपस्या कोई व्रत कोई फॉर्मूला को देगा तो ये लोग नहीं करने वाले, स्थिति ऐसी गंभीर है, समझो कोई हॉस्पिटल में एडमिट है समझो उसका किडनी फेल हो गया है और उसके बोलेंगे आपको 8 घंटा काम करना पड़ेगा, आपको ऐसे कैसे पड़े आप इधर 8 घंटा जाओ नौकरी पे और काम करो, तो बोलेगा प्रॉब्लम मैं डायलिसिस में हूँ कैसा उठूँ यहाँ से, तो उसको नहीं बोलेंगे साहब, बोलेंगे बेचारा डायलिसिस में क्या करे उसको, तो डोनेशन इकट्ठा करके देंगे उसको थोड़ा सा जिंदगी चलेगी उसकी, फिर उसको बोलेंगे कि हम लोग हे चलो 8 घंटा काम पे जाओ इधर क्या पड़े हो बेकार टाइम पास कर रहे हो, ऐसा नहीं बोल सकते। किसी को 104 बुखार आया है कोरोना वायरस तो कोई बोलेगा उसको जाओ स्कूल जाओ जाओ कंपनी में जाओ उधर बॉस इंतजार कर रहा है तुम्हारा टारगेट पूरा नहीं हुआ है, नहीं कर सकते ना सर, क्योंकि अवस्था ही इतनी पतित है, अवस्था इतनी पतित मतलब दुखी अवस्था है, तो हमारी अवस्था उसी प्रकार की बहुत दुखी अवस्था है, बहुत एक क्या बोलते उसको दुर्भाग्य अवस्था है, तो भगवान ज्यादा लात नहीं मारते ये करो वो करो तपस्या करो ऐसे नहीं, एक काम करो आप कुछ भी मत करो जो कर रहे हो वही करो मेरा नाम लो खाली बस। अभी मैं क्या करता हूं जो मैं पहले बेनिफिट तुमको दिया करता था तब करने के बाद वो अभी आपको नाम लेने के बाद तुरंत दे दूंगा है ना, तो 15 घंटा काम करने के बाद 10 साल के बाद में 1 करोड़ मिलता था तो मैं आज को 1 दिन में दे रहा हूं आपको, ले लो, तो हम बोलेंगे ये कैसा मुमकिन है, ये झूठ बात है, सब बेकार की बात है, हम नहीं करेंगे, ऐसे कैसे हो सकता है। 10 साल मेहनत करने के बाद जो मिलने वाला है ये मुझे बोल रहा है मैं एक दिन में दूंगा आपको, तो विश्वास भी नहीं होता है, इतनी भी हमारी बुद्धि शुद्ध नहीं है। लेकिन भगवान ने ऐसा इंतजाम किया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, इसको स्मरण करते करते ही हम लोग अपना उद्धार होने का दर्शन करेंगे, और वो अगर हमारे पास उतना भी समय नहीं है तो और क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। आपको बोला है भाई आप 1 रुपया मुझे दे दो, 1 रुपया तो मैं आपको एक टिकट दूंगा कूपन, यहाँ से आप ट्रेन पकड़ो, चर्च गेट में उतरो, वहां से 15 मिनट चलो और उधर एक जगह है कफ परेड, वहां पर जाओ, ये कार्ड दिखाओ, आपको 1 करोड़ रुपए मिलेगा। आप बोलेंगे अरे कौन जाएगा धूप में, इतना ट्रेन में गर्दी होती है, इतना ट्रेन में पसीना आता है, इतना भीड़ में कौन चढ़ेगा उसके अंदर, उसके बाद पहुंचते हुए इतनी धूप हो जाएगी, वहां से आगे रिक्शा टैक्सी चल के जाना है, बाप रे कफ परेड कितना दूर है, 55 किलोमीटर दूर है यहाँ से, कौन जाएगा, नहीं चाहिए कूपन फिर यहाँ पर। इसको क्या बोलेंगे आप, दुर्भाग्य बोलेंगे, इतना दुर्भाग्य है कि इतना सस्ता चीज करने के बाद भी उतना भी करने को इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर भाई और क्या कर सकते हैं। लो भाई 50 का कूपन ले लो, 50 पैसे करो, चलो 1 रुपये भी नहीं, 50% डिस्काउंट ले लो, लेकिन लो कूपन और जाओ उधर। बोले 50,000 ज्यादा होता है सर, 25,000 करो ना। ये हमारी स्थिति है, तभी वो बोल रहे हैं तप करने की जरूरत नहीं आपको, कोई मंदिर की पूजा करने की जरूरत नहीं है, आगे आपको कोई त्याग करने की जरूरत नहीं, कोई संन्यास करने की जरूरत नहीं, परिवार को छोड़ने की जरूरत नहीं है, धन दौलत छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप करो सब कुछ जो कर रहे हो, लेकिन खाली वो नाम जो है मेरा, भगवान बोल रहे हैं रोज ले लो, नियम से ले लो, प्रेम से ले लो, समय पे ले लो, सुबह से समय के समय पर, लेकिन उस समय सोते रहते हैं जिस समय वो करना होता है। ऑफिस 9 बजे है तो लोग 8:40 को उठते हैं, एक्सप्रेस स्नान करते हैं 5 मिनट के अंदर, और हाथ में ही ऐसा जूस और ब्रेड लेके चबाते चबाते भागते हैं उधर टैक्सी ट्रेन बस पकड़ने के लिए, करते कि नहीं करते बताओ आप। हाँ ऐसे भागते हैं ना, उधर जाते जाते भी बाल बनाते ऐसे ऐसे कुछ करते हैं, ऐसे कुछ कल का शर्ट पहन के भाग जाते हैं, 9 बजे रॉट पंचिंग कर दी, फिर वहां जाकर कभी भी बाथरूम जाते हैं, ब्रश भी कर लेते कभी कभी, उधर पंच हो गया ना अभी क्या, अभी थोड़ा सा ब्रश कर लेते। ऐसे मैं जानता हूँ, मैं आपको कुछ मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने अमेरिका में भी देखा है, इंग्लैंड में भी देखा है, और गल्फ में भी देखा है, और इधर भी देखा है, ये लोग करते हैं ऐसे। मतलब वो समय जो भगवान ने दिया है उनको नाम पुकारने के लिए, तो पूरा सोते रहते हैं, और आप उनको बोलो रात को जगो, तो एकदम तैयार रहते हैं। आप अपने आप को झांकते देखो हृदय के अंदर, रात को जगने को बोलो 11, 12, 1, 1:30, कुछ मूवी चल रहा है, कुछ पिक्चर चल रहा है, कुछ मैच चल रही है, हाँ कुछ कोई मैच किधर तो भी खेल रहा है, और अपने आप करोड़ों कमा रहे हैं, और यहाँ पर आप लोग किन की समय नींद बर्बाद करके देख रहे हैं, सॉरी सिक्सर मारा, अरे हार रहे 2 रन बाकी है उसका, अभी 2 रन निकाला और जीत गया, तुमको क्या मिला, तुम्हारा समय बर्बाद हो गया, नींद बर्बाद हो गई, सर दुख रहा है, कल एग्जाम थी हमारी, सब बेकार, और ऊपर सोएगा, ऊपर लेट उठेगा, हेडेक हो जाएगा, काम पे भी जाना है, अरे वो लोग करोड़ों कमा के सो गए मस्त में, पार्टी पर मना दिया, पर हम लोगों ने इतने घंटे बर्बाद किए उनके पीछे, लेकिन हमको उसमें इंटरेस्ट है, हमको उसमें इंटरेस्ट है, रात को जगने को बोलो इंटरेस्ट है, सुबह उठने को इंटरेस्ट नहीं, इतना सिंपल बना दिया भगवान ने। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको इतना बोल रहा हूं, पोट चिड़के नहीं कहा सामते हो तुम्हारा नहीं उड़ा, क्यों बता रहा हूं आपको मैं इतना तड़प तड़प के क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि ये इतना सिंपल है क्योंकि मैंने उसका लाभ लिया हुआ है, और मैं जानता हूं पूरे अनुभव के साथ कि इसमें कितनी शक्ति है, जीवन में कितना कल्याण है, और कितना आनंद जीवन में है, और कितना जीवन में सब कुछ सुकून इसके अंदर प्राप्त होता है, इसका मैंने अनुभव किया है, इसलिए मुझे यहाँ पर आकर ऐसे बोलने की प्रेरणा हो रही है, तो किसी ने मुझे ऐसे ही सब बताया था तड़प तड़प के, और मैं नहीं मान रहा था, फिर बहुत समय के बाद माना तो चेंज हो गया पूरा लाइफ मेरा। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि मैंने जो 1 साल उसको जूझने में वेस्ट किया ना, वो बता रहा है लेकिन मैं जूझ रहा हूँ, वो बता रहा है मैं जूझ रहा हूँ, उसको ही गाली दे रहा हूँ, उसको बोला मत आ ऐसे बोल रहा हूँ, वो 1 साल जो मैंने वेस्ट किया ना वो बहुत कीमती 1 साल था मेरा, अगर तुरंत मान जाता तो वो 1 साल भी मेरे इसमें जुड़ जाता पूरा इस करने में, तो एक कीमती सवाल साल मेरे यौवन का वेस्ट हो गया उसके साथ में जूझने में, जो मुझे अमृत दे रहा है मैं उसको लात मार रहा हूँ। बालक कैसे करता है, मुंह वहां उसको खाना खिलाते तो उसको मुंह पे उल्टी करता है वो, या लात मार देता है उसके ऊपर, है ना, आपने देखा है ना, माँ उसको फिर भी खिला देते फिर भी वो मुंह पर लात मार देता है उसके, वैसे ही हम लोग कर रहे थे। और आज पता चलता है कि कितनी कीमती वस्तु वो दे रहे थे हमको, और जब वो हमने लिया अच्छे मूड में आकर तो कल्याण ही कल्याण हो गया जीवन का। तो व्यक्ति का लाख लाख धन्यवाद है, बार बार जाते हैं धाम में तो उसके लिए याद करते हैं, उसके लिए तुमने बचाया, तुमने मुझे इस रास्ते पर लाया और बचा दिया। वो भी कहीं और है लेकिन उसकी बार बार याद करते हैं कि अगर तुमने चिकाटी नहीं मारा होता तो हम लोग नहीं आते उसके अंदर। कहीं और करते होंगे आज, कहीं और कुछ करते होंगे, कहीं सिगरेट पीते होंगे, कहीं दारू पीते बैठते होंगे, तो सब डॉक्टर लोग करते ना ऐसे, अपने आप को बड़ा समझते हैं बहुत, उसमें बहुत कॉस्टली दारू पीते हैं, बहुत कॉस्टली और कुछ करते हैं, क्योंकि देखिए लग रहा है विक पीपल, तो हम लोग थोड़ी रोड की पियेंगे, हम लोग तो वैक्स 69 पियेंगे, उसमें ही गर्व मानते थे, हम लोग इतनी कीमती दारू पी रहे हैं, ऐसे हम लोग कुछ करते होंगे। पैसा आएगा तो आदमी को बहुत घमंड आता है ना, फिर वो ऐसे ही पैसे बर्बाद कर देता है, हम लोग भी ऐसे करते होंगे उस समय अगर वो नहीं मिलते हमको, लेकिन वो मिले और हमने स्वीकार किया, इसलिए हमारा जीवन जो है ना वो इतना अभी समृद्ध हो गया है, क्या कहें आपको, इतने अच्छे लोगों के अंदर बैठते हैं उठते हैं जो शुद्ध जीवन देने वाले हैं, पवित्र विचार करने वाले हैं, कल्याणकारी है, परोपकारी जीव है, ऐसे लोगों के साथ में उठते बैठते हैं, उनके साथ संग करते हैं, उनका इतना भाग्य है हमारा, नहीं तो उनके साथ बैठने की हमारी योग्यता नहीं थी, ऐसे लोगों को हमारा परिचय हो गया है, संतों का परिचय हो गया, उसकी वजह से इतने बड़े बड़े सिद्ध संतों का हमारा मुलाकात हो गया है, उनका आशीर्वाद है हमारे ऊपर। तो ये सारी चीजें कृपा है पूरी, उसको क्या किसी ने पैसा दिया था क्या कि डॉक्टर शानबाग को आके भक्त बनाओ, वो तो प्रेम से मित्रता के प्रेम से ही कर रहा था, कोई हमने आज तक उसको दिया नहीं है कुछ, उसका फीस नहीं दिया उसको, एक साल में तड़पा मेरे साथ भाई ये लो 1 करोड़ रुपए ले लो 50 लाख ले लो, ऐसा कुछ दिया नहीं उसको आज तक, आज तक उसने कोई सोचा भी नहीं कह रहे तेरे को मैंने भक्त बनाया था जिंदगी इतना कल्याण कर दिया मेरे को क्या दिया तुमने, ऐसा कुछ नहीं बोला उसने। कितनी बड़ी कृपा है, देखो सबसे बड़ी कल्याणकारी वस्तु जो है जीवन में भेंट के रूप में फ्री में दिया है और कल्याण मेरा ही हुआ है, उसको वो अपना किया उसे उसका कल्याण हुआ, लेकिन उसको भी किसी ने ऐसे ही बताया था इसलिए वो दूसरे को बिना बताए दे रहा है। जो चीज आपको फ्री में मिली है आप लोगों को फ्री में दे रहे हैं। कॉलेज में कैसे बताया मेरा रैगिंग हुआ था तो मैं भी आपको रैगिंग करूंगा क्योंकि तो मेरा हुआ था ना आपका भी होना चाहिए, ये नेगेटिव थिंकिंग है। लेकिन मुझे किसी ने कृपा करके भगवत का भगवान का प्रसाद नाम प्रसाद दिया था तो मुझे भी लोगों को फ्री में देना चाहिए, जा जाके बुला बुला के बोल बोल के देना चाहिए, वो तो नहीं सुनेंगे बोले क्या बकबक करते हैं, लेकिन फिर भी देना है जाके, ये हमारा भाग्य है। इसलिए मैं सोच रहा था कि आप लोगों ने ऐसा क्या प्लानिंग किया था क्या भक्ति विभाग में आने के पहले, हमारा बैच है ना 2 बार बरसाना जाना ही चाहिए कुछ भी हो जाए, कुछ प्लानिंग ही नहीं आपका, पहला बार प्लानिंग में नहीं था, पहला बार भी बिना प्लानिंग गए थे आप, सेकेंड टाइम भी वहां पर डिसीजन चेंज हो गया इसलिए आप सेकेंड टाइम भी बिना प्लानिंग के गए, लेकिन आप बोलेंगे दोनों बार फ्री में गए और अगले बार भी फ्री में जाना चाहिए तो आप कभी नहीं जाएंगे बाद में। 2 बार फ्री में क्यों गए वो पता है आपको, वो ड्रग बेचते हैं ना ड्रग वाले लोग पता है, वो ड्रग पैसे बेचते वहां में चॉकलेट में डाल के स्कूल के बाहर लोगों को फ्री में बांटते हैं, फिर बच्चा बोलेगा मम्मा मुझे वही चॉकलेट चाहिए क्योंकि उसको नशा होता ना उसका, तो दूसरी बार वो फ्री में देगा उसको, और तीसरी बार जाएगा बच्चा तो चार्ज लेगा उसका फिर, और बच्चे को ड्रग एडिक्ट बनाएगा और ड्रग भी देगा, इसीलिए चलता है दुनिया में आजकल, आपको पता नहीं हुआ शायद, आप तो सब जानते हो कितना वीडियो करते हो यूट्यूब देखते हो सब जानते हो, क्या नहीं जानते हो सब जानते हो। तो ये एक नेगेटिव एग्जाम्पल है, लेकिन आपको अगर 2 बार फ्री में ऑन ड्यूटी जाने को मिला है तो आप अभी अपने आप जाओ और धाम से रिश्ता बनाओ, भगवान से रिश्ता बनाओ, प्रेम बनाओ, ताकि आपको वैल्यू मालूम पड़ेगी उसकी, जो फ्री में दिया था वो कितना अमूल्य था, अगर आपको समझ में आए तो फिर आप वैसे करेंगे। इतनी कृपा हुई हमारे को, क्या योग्यता थी हमारी, हमने क्या तपस्या किया है, तो जंगल में गए थे क्या सब घर छोड़ के तपस्या किया था भगवान की प्राप्ति के लिए, नहीं किया हमने कुछ नहीं किया है, उनको ऐसे ही लॉलीपॉप के रूप में मिला है सब कुछ, ले लो ले लो ले लो ले लो फ्री में ले लो, और भगवान का नाम का जप करो, जीवन को सुधारो, कल्याण करो जीवन का। पूरे भगवान एक वैकुंठ को छोड़कर 48 इयर्स के लिए इधर आके बैठे आपको फ्री में भगवान का नाम बांटने के लिए, बिना वध किए, बिना किसी का सर काटे हुए, किसी का वध नहीं किया भगवान ने इसमें। राक्षस लोग वैसे ही थे लेकिन किसी का वध नहीं किया, राक्षसी प्रवृत्ति का वध किया। और राक्षस व्यक्ति को, राक्षसी प्रवृत्ति को नष्ट करके, मतलब आपको रोग है इसलिए आपको फिर मर्डर करते हैं, अरे इसको कोरोना वायरस हो गया इसको मार डालो, ऐसा नहीं होते। वो कोरोना वायरस को मारने का प्रयास करते हैं और आपको जिंदा रखते हैं और आपको कोरोना फ्री कर देते हैं ताकि आप आरोग्य संपन्न जीवन जियो। उस तरह से उन्होंने राक्षसी प्रवृत्ति को नष्ट करके राक्षसों को भक्त बना दिया। तो अच्छा क्या है, सर काटना अच्छा है कि राक्षसी प्रवृत्ति को नष्ट करना अच्छा है? भगवान ने वो किया और उसके हकदार और उसके क्या कहते हैं उसको, लाभार्थी हम लोग हैं, बेनिफिशियरी, वी आर द बेनिफिशियरीज। इसलिए आप लोग ऐसे सोचो मत कभी क्या है, जब तक पढ़ाई करना है, यहाँ पर सुनना है, शुक्रवार की बातें रोज सुनना है, बाद में हम लोग फ्री हो जाएंगे, कुछ नहीं सुनेंगे, बोर हो गया हम लोग सुन, ऐसे सोचेंगे तो उसी को दुर्भाग्य कहते हैं। और आपको लगेगा अरे बाय द वे पढ़ने तो गए थे लेकिन क्या क्या सीख के आए, वो जिंदगी को कल्याण करने वाला है, आगे भी उसको इस्तेमाल करेंगे, ऐसे सोचेंगे तो कल्याण हो जाएगा आपका। आप में से अभी सोच रहे हो ना कि भाई क्या ये शुक्रवार को मैडम बोल रही है, आना ही चाहिए, ऐसा है वैसा है, कब खत्म होगा ये सोचने वाले लोगों का कल्याण कैसे हो सकता है? लेकिन बोलेंगे नहीं नहीं ये बहुत कीमती चीजें हैं, वो ऐसे ही मिल रही है पढ़ते पढ़ते ही, कितना भाग्य है हमारा कि कल्याण होगा जीवन। तो ये हमारी कृपा नहीं है, ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। श्री कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु जन बनकर आए तो उन्होंने ये हमारे ऊपर कृपा किया है और उस कृपा का लाभ लेना आपके हाथ में है। जितना लाभ लोगे उतना आपका कल्याण है, हमने लाभ लिया है हमारा कल्याण हो रहा है। अगर आप नहीं भी लोगे, हमारा तो हो ही रहा है पर हो ही जाएगा पक्के 100% उसका इतना अनुभव है हमको। लेकिन सोच रहे हैं कि अकेले क्यों जाए भगवान के पास, हम लोगों को साथ में लेके जाएंगे तो आपका भी कल्याण हमारा भी कल्याण है ना। कभी आदमी अकेला एंजॉय नहीं कर सकता, देखो कितना भी धन होगा तो उसको एंजॉय करने के लिए भी कंपनी चाहिए ताकि वो अपना वेल्थ, अपना सॉन्ग, जो प्रॉपर्टी है वो भी लोगों को दिखाए कि कितना मेरे पास प्रॉपर्टी है, कितना धन है, कितना एंजॉय करता हूँ मैं। अकेला आदमी एंजॉय नहीं कर सकता है, उस प्रकार से भक्ति का आनंद भी अकेला आदमी एंजॉय नहीं कर सकता है, उसको लगता है कि इसको बांटना चाहिए, इसको बांटना चाहिए, मिलकर हम लोग एंजॉय करेंगे भक्ति का जीवन। वही प्रिंसिपल है उसका। आप लोगों को हमारी नम्र विनती है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे सोचो के मत पुकारो, प्रेम से पुकारो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना कहने से आपका जीवन का कल्याण होगा। और ये इस्कॉन की फैक्ट्री में बनाया हुआ मंत्र नहीं है, ये उपनिषद में दिया हुआ मंत्र है। लोगों को सोचा कि हरे कृष्णा वाले ने बनाया इसको, नहीं, भगवान ने उपनिषद में दिया है मंत्र, इसी नाम से दिया है, उसका वर्णन भी दिया आगे इससे क्या होने वाला है और कैसा होगा इसके आगे परिणाम। तो ये सब भगवान की भेंट है आपके लिए, शास्त्रों में से आज आई हुई है और उसको हमने भी लिया है, आप भी ले लो और जीवन का कल्याण करो। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।